रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी का 3 दिवसीय पूर्वारंभ कार्यक्रम हुआ संपन्न। पीएसबी को नमूना प्रसारण संस्था के रूप में विकसित करने में सभी पक्षों का साथ रहने का संचार मंत्री ने जताया विश्वास। सरकार के काम कार्यवाही को अधिक प्रभावकारी बनाने का कांग्रेस से बने मंत्रियों को सभापति देवा ने किया निर्देश। दुर्लभ पक्षाघात के इलाज में प्रयोग होने वाली और प्रति मात्रा लगभग 1.5 लाख रूपये वाली दवा निःशुल्क उपलब्ध कराने का स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्णय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्ष यान से सफलतापूर्वक जुड़े। अब समाचार विस्तार से। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी का 3 दिवसीय पूर्वारंभ कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। आज सिंह दरबार में पूर्वारंभ कार्यक्रम के समापन समारोह को संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा कुरुंग ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पीएसबी को सरकार की ताबेदारी न करके जनता के पक्ष में काम करना चाहिए। इस बात का जिक्र करते हुए कि देश में सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक सह अस्तित्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ पीएसबी को काम करना होगा, संचार मंत्री गुरुंग ने कहा कि राज्य की कमी कमजोरियों को बताते हुए जन आकांक्षा के मुताबिक काम करने के लिए पीएसबी को स्वायत्त बनाया जाएगा। उन्होंने ये प्रतिबद्धता भी जताई कि पीएसबी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक नियमावली और अन्य नीति निर्धारण में सरकार और मंत्रालय की ओर से नीतिगत निर्देशों को छोड़कर अन्य किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। संचार मंत्री ने यह विश्वास जताया कि पीएसबी को नमूना प्रसारण संस्था के रूप में विकसित करने में सभी पक्षों का साथ रहेगा। कार्यक्रम में विभिन्न विज्ञ सांसद लगायत ने अपनी अपनी धारणा रखी थी। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान का आज प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। आज पोखरा में आयोजित हुए समारोह में विक्रम संवत 2080 में एमडी और एमएस उत्तीर्ण 38 विद्यार्थियों को दीक्षित होने का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। समारोह में प्रतिष्ठान के कुलपति एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दीक्षितों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए अरविंद कुमार शाह ऑर्थोपेडिक और आशीष सापकोटा जनरल सर्जरी को उपकुलपति पदक प्रदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए प्रयासरत है। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देवा ने पार्टी की ओर से बने मंत्रियों को सरकार के काम कार्यवाहियों को और अधिक प्रभावकारी बनाने का निर्देश किया। आज देवा निवास पूरा नीलकंठ में आयोजित पदाधिकारियों और मंत्रियों की बैठक में सभापति देवा ने ऐसा निर्देश किया। उन्होंने सरकार को और प्रभावकारी बनाने में आवश्यक सहयोग देने और संसद अधिवेशन शुरू होने से पहले संबंधित मंत्रालय अंतर्गत का कानून कहां पहुंचकर अटका हुआ है उसे देखकर निराकरण पर पहुंचाने का काम करने का निर्देश किया। ये जानकारी कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने दी। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल में बहुत दुर्लभ पक्षाघात यानी पैरालिसिस के इलाज में प्रयोग होने वाली थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स नामक दवा अब निःशुल्क उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि पक्षाघात का इलाज न हो पाने और जीवन रक्षा करने वाली दवा के अभाव में हर साल 800 लोगों को जान गंवानी पड़ रही है, इसलिए इस दवा को निःशुल्क उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्णय किया है। अमेरिका सरकार के सहयोग में प्राप्त दवा को संघीय और प्रादेशिक अस्पतालों के माध्यम से निःशुल्क वितरित किया जाएगा। ये जानकारी मंत्री पौडेल के निजी सचिवालय से प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई है। इसी माह 22 गते से किशोरियों को दी जाने वाली सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध ह्यूमन पापिलोमा वायरस एचपीवी के टीके 7 प्रदेशों में भेजे गए हैं। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। वैक्सीन के लिए ग्लोबल अलायंस गावी के सहयोग में सभी 17,70,020 डोज वैक्सीन नेपाल आने के बाद सभी प्रदेशों में भेजा गया है। ये जानकारी स्वास्थ्य सेवा विभाग के आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा के निर्देशक डॉ पवन जंग रायमाझी ने दी। निर्देशक डॉक्टर रायमाझी के मुताबिक गावी ने किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एचबीवी के टीके निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। सरकार ने इसी माघ 22 गते से फागुन 6 गते तक देश की कक्षा 6 से 10 तक और विद्यालय बाहर के 10 से 14 वर्ष के उम्र समूह की 16,88,900 किशोरियों को टीके दिए जाएंगे। कर्णाली प्रदेश की महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में रही भेरी कॉरिडोर सड़क खंड की स्तरोन्नति करने के लिए अर्थ मंत्रालय ने 4,20,00,00,000 रूपये का बजट सुनिश्चित किया है। जाजरकोट की नलगाट नगरपालिका वार्ड नंबर 12 तल्लू से डोलपा के त्रिपुरा कोट तक सड़क स्तरोन्नति के लिए मंत्रालय ने बजट सुनिश्चित किया है। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मंत्रालय के आग्रह पर अर्थ ने बजट सुनिश्चित किया है। ये जानकारी प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व शहरी विकास मंत्री धन बहादुर बुढ़ा ने दी। डेमोक्रेटिक लॉयर्स एसोसिएशन डीएलए नेपाल ने अदालत के अंदर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पर हुए आक्रमण का निंदा करते हुए कहा कि ये कानूनी शासन और लोकतांत्रिक पद्धति के विपरीत है। डीएलए के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी और महासचिव अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र प्रसाद अधिकारी द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में ये बात कही गई है। विज्ञप्ति में स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड के मामले में पीड़ित की ओर से बहस पैरवी करके अदालत से निकलते समय वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी पर हुए हमले के प्रति गंभीर ध्यानाकृष्ट होने की बात कही गई है। विज्ञप्ति में वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों को पहचानकर कानूनी कार्यवाही करने का सरकार से अनुरोध भी किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स के तहत उपग्रहों की डॉकिंग सफलतापूर्वक की। इसरो ने यह भी घोषणा की कि वह डॉकिंग के बाद एक वस्तु के रूप में 2 उपग्रहों पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया भी सफल रही। उपग्रहों की सफल डॉकिंग के साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला 4th देश बन गया है। इस मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान 4, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे अभियान निर्भर थे। चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे, वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने गत 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रात 10 बजे स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहित कई प्रमुख हस्तियों ने विज्ञानियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी का 3 दिवसीय पूर्वारंभ कार्यक्रम हुआ संपन्न। पीएसबी को नमूना प्रसारण संस्था के रूप में विकसित करने में सभी पक्षों का साथ रहने का संचार मंत्री ने जताया विश्वास। सरकार के काम कार्यवाहियों को अधिक प्रभावकारी बनाने का कांग्रेस से बने मंत्रियों को सभापति देववा ने किया निर्देश। दुर्लभ पक्षाघात के इलाज में प्रयोग होने वाली और प्रति मात्रा लगभग 1.5 लाख रूपये वाली दवा निःशुल्क उपलब्ध कराने का स्वास्थ्य मंत्रालय का निर्णय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह अंतरिक्षयान से सफलतापूर्वक जुड़े। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।